नमस्कार भारत, 14 अप्रैल रविवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी रैलियों में तेजी, अलीगढ़ में आज होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं महागठबंधन की दूसरी रैली में मायावती का योगी आदित्यनाथ पर निशाना।
हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं। हमें बजरंग बली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी दलित जाति से ही जुड़े और इनकी जाति की खोज योगी ने की है।
जानेंगे 100 साल बाद पाकिस्तान में जलियांवाला बाग नरसंहार को कैसे याद किया जाता है।
पाकिस्तान में उसकी मुझे न कोई तैयारियां नजर आती हैं, न कोई उसका जिक्र मिलता है। पाकिस्तान में जो दर्सी किताबें हैं उनमें सिर्फ मुसलमानों का जिक्र है।
लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। एक ओर जहां सूडान में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति उमर अल बशीर और रक्षा मंत्री अवाद इब्न औफ के इस्तीफे को बड़ी जीत मान रहे हैं, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे ये तख्ता पलट मंजूर नहीं। उनका कहना है कि इसकी अगुवाई करने वाले बशीर के करीबी हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लोगों ने देश की राजधानी खारतूम में मिलिट्री काउंसिल से मुलाकात की। उनका कहना है कि उन्होंने एक सैन्य नेता द्वारा घोषित 2 साल की संक्रमण अवधि को अस्वीकार कर दिया है। इस काउंसिल में सेना के अधिकारी और सुरक्षा सेवाओं से जुड़े लोग शामिल हैं। सूडान में एक सक्रिय कार्यकर्ता हामिद मुर्तदा ने बताया कि मिलिट्री काउंसिल के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जानकारी देने वाली नहीं रही है। उन्होंने कहा,
In my personal opinion, it was positive, but it was not enough. It's not satisfactory. It's still vague. It doesn't show.
मैं अगर व्यक्तिगत राय दूं तो ये एक सकारात्मक बातचीत थी, लेकिन पर्याप्त नहीं थी और न ही पूरी तरह संतोषजनक। अभी कोई स्पष्ट योजना नहीं है, आगे क्या होगा और कैसे होगा इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए सिर्फ इसे पहली बैठक के तौर पर गिनना ही उचित होगा, उससे अधिक कुछ भी नहीं। ये थे हामिद मुर्तदा के शब्द। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे ने चेतावनी दी है कि लीबिया में विदेशी सैन्य हस्तक्षेप भूमध्य सागर में शरणार्थियों के पलायन को और बढ़ा सकता है। गतिरोध को रोकने के लिए उन्होंने सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा,
l'Italia vuole avere un ruolo in Libia come l'ha avuto sempre adesso. Il ruolo dell'Italia è quello
इटली चाहता है कि वो इलाके में शांति और स्थायित्व स्थापित करने में सहयोग करे। यही कारण है कि हर किसी यानी हर पक्ष से बात करते समय हम संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। हमें लगता है कि सभी विदेशी खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नेताओं को भी शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये थे इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे के शब्द। दुनिया के सबसे बड़े विमान ने कैलिफोर्निया में अपनी पहली उड़ान भरी। 6 इंजनों वाले इस विमान के पंखों की लंबाई एक फुटबॉल मैदान से भी अधिक है। इस विमान को छोटे उपग्रहों के हवाई लॉन्च के लिए विकसित किया गया है। स्ट्रेटो लॉन्च नामक कंपनी ने इस विमान को अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजने के लिए बनाया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इक्वाडोर में एक न्यायाधीश ने एक स्वीडिश सॉफ्टवेयर डेवलपर को विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के साथ नज़दीकी होने की वजह से जेल की सज़ा सुनाई है। ओला बिनी को साइबर अटैक से संभावित मामलों के मद्देनजर हिरासत में रखा गया है। इक्वाडोर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इक्वाडोर के लंदन स्थित दूतावास में असांजे के साथ 7 साल के प्रवास के दौरान बिनी ने उनसे दर्जनों बार मुलाकात की है। वेतन की मांग को लेकर भारतीय एयरलाइन जेट एयरवेज के सैकड़ों कर्मचारियों ने दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जेट एयरवेज बुरी तरह कर्ज में है। प्रदर्शन कर रहे बहुत से कर्मचारियों के हाथ में तख्तियां थीं जिसमें लिखा था कि जेट एयरवेज को बचाकर हमारे भविष्य को सुरक्षित कीजिए। निजी स्वामित्व वाली एयरलाइन $1 अरब से भी अधिक के कर्ज में है। ऐसे में इसके 17,000 कर्मचारियों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। विमान कंपनी ने सोमवार तक के लिए अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित कर दिया है, जिसकी वजह से दुनिया भर के शहरों में बहुत से यात्री फंस गए हैं। 1 दशक पहले तक जेट एयरवेज भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन थी, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि हाल के सालों में कंपनी को जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा है। सदफ खादेम ईरान की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो आधिकारिक तौर पर किसी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब 4 दिन का समय बचा है। 18 तारीख को लोकसभा की 97 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण के मद्देनजर विभिन्न नेता रैलियों में पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ और मुरादाबाद में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। 18 अप्रैल को अलीगढ़, मथुरा, आगरा समेत 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। इन सीटों पर क्या क्या मुद्दे हैं और किस पार्टी को बढ़त हासिल है, इसी की जानकारी के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय जुड़ चुके हैं। जी वात्सल्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बताएं कि आज क्या क्या चुनावी सरगर्मियां रहने वाली हैं इन 8 सीटों पर।
जी बाबा शाहिद, ये 8 सीटें जैसा आपने जिक्र किया, हाथरस, आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, नगीना, बुलंदशहर, अमरोहा और अलीगढ़, ये 8 सीटें भारतीय जनता पूर्ण है, क्योंकि साल 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यहाँ लगातार तापमान ऊपर जा रहा है, 40 डिग्री से ऊपर चला गया है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में जनसभा करेंगे। नुमाइश ग्राउंड है अलीगढ़ में, वहां पर उनकी रैली होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आगरा में, जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चौधरी अजीत सिंह, जो खुद उम्मीदवार थे मुजफ्फरनगर से, और उनके बेटे जो बागपत सीट से चुनाव लड़ रहे थे, अपना चुनाव पूरा होने के बाद उन्होंने भी क्षेत्र में डेरा डाल दिया है। और अलीगढ़, जो राष्ट्रीय लोक के लिहाज से है, इनमें से सिर्फ एक सीट यानी मथुरा पर राष्ट्रीय लोक चुनाव है, लेकिन गठबंधन के उम्मीदवारों को वो जगह जगह घूमकर समर्थन दे रहे हैं, रैलियां उनके साथ। सभी दलों ने पूरा जोर यहाँ पर।
जी वात्सल्य, आपकी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। हमें बताएं, आप लगातार इन अधिकतर सीटों पर जो है घूम रहे हैं, लगातार आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर हावी हैं आप जो देख पा रहे हैं चुनाव में?
मोहम्मद शाहिद, 2 मुद्दे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये खासतौर पर सभी सीटें हैं, अलीगढ़ से लेकर अगर आप फतेहपुर सीकरी तक चले जाएं तो यहाँ आलू के साथ बहुत महत्व है। मतलब आलू किसान आलू की खेती ज्यादा करते हैं, और पिछले 3 साल से आलू किसान बड़ी मुश्किल में है। उनका दावा है कि फसल की कीमत नहीं मिल पाती। दूसरा मुद्दा यहाँ पानी का है। ज्यादातर लोकसभा सीटों पर, ज्यादातर जिलों में पानी की बहुत कमी है। पानी या तो नहीं है, जमीनी स्तर पानी का काफी नीचे चला गया है, या फिर खारा पानी है यानी नदी, उसको लेकर लोग परेशान है। और लगातार सभी दल इस शामिल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चुनावी मुद्दों के लिहाज से ये मुद्दे ज्यादा बड़े नहीं बन पा रहे हैं। मुद्दे जातिगत गढ़ के हिसाब से ही चल रहे हैं, या किस पार्टी का कितना जोर है ये इसी बात पर तय कर रहा है कि उसके साथ समीकरण किस तरह है।
वात्सल्य, ये बताएं कि राष्ट्रवाद कितना हावी है, ये आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है।
जी, 3 दिन पहले भी मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि राष्ट्रवाद के मुद्दे का असर ये है कि यहाँ पर एक विधानसभा, यहाँ एक लोकसभा सीट है हाथरस, मैं वहां का दौरा कर रहा था और मैं बिल्कुल आलू किसानों के बीच में खेत में बाकी था
जी।
मैंने उनसे जब बात करना शुरू किया तो आलू किसानों ने हमें बताया कि उनकी दिक्कतें कितनी बड़ी है। 1 बीघा जब वो खेती करते हैं तो
जी
14,000 रुपए का खर्च आता है, लेकिन मिलते 10,000 रुपए है। पर जब बात आई वोट करने की तो उन्होंने कहा कि चाहे हमें कितनी दिक्कत हो हम मोदी को देना चाहेंगे। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा राष्ट्रवाद उसकी
जी। बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य इतनी तमाम जानकारियों के लिए। आज जैसा कि आपने सुना, अभी वात्सल्य राय बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में रहेंगे, उसी तरह से कल देश में अच्छी खासी चुनावी हलचलें रहीं। बदायूं में हुई महागठबंधन की रैली में बसपा प्रमुख ने अली और बजरंग बली को याद किया। सहारनपुर की रैली में मुसलमानों से वोट मांगने पर चुनाव आयोग मायावती को पहले ही नोटिस थमा चुका है। बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी बता रहे हैं कि कल देश में क्या क्या चुनावी हलचलें हुई।
चुनावी हलचल की शुरुआत राजधानी दिल्ली से। आम आदमी पार्टी ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लिए खतरा बताते हुए लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कांग्रेस से गठबंधन करने की दोबारा पेशकश की है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा,
आम आदमी पार्टी का स्टैंड साफ है। आम आदमी पार्टी अमित शाह मोदी जी की जोड़ी को रोकने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार थी, आज भी हम तैयार है। अगर ये इस फॉर्मूले पे काम करने को तैयार है, गोवा का समय निकल गया, पंजाब में चलिए, एक बेसिक इन प्रिंसिपल दिक्कत है। कांग्रेस को तय करना है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, मोदी अमित शाह की जोड़ी को रोकना चाहते हैं, या हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़के हारे ये तय करना चाहते हैं।
मनीष सिसोदिया के इस बयान से एक दिन पहले ही कांग्रेस के दिल्ली मामलों के प्रभारी पीसी चाको कह चुके हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के बदायूं में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने दावा किया है कि बजरंग बली और अली के साथ आने से नतीजे बदल जाएंगे। राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन की रैली में मायावती ने कहा,
हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी है, इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। और खासकर हमें बजरंग बली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं और इनकी जाति की खोज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने की है। ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं।
दूसरी ओर बदायूं की रैली में ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मायावती पर आरोप लगाया कि चुनाव आने पर ही उन्हें दलितों की याद आती है।
चुनाव आता है तब बहन जी को अम्बेडकर जी याद आते हैं, जब सत्ता पे आती है अम्बेडकर जी को भूलकर खुद की मूर्तियां लगाने लगती है, खुद की मूर्तियां लगाने।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार के लोकसभा चुनावों में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। सिलीगुड़ी की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा,
आप लोग देश बचाओगे, आप लोग देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, आप लोग आगे बढ़ो, नौजवान आगे बढ़ो, नौजवान रास्ता दिखाओ, आप लोग देश के लिए आगे बढ़ो, आप ही देश संभालेंगे।
कर्नाटक में कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को उन वादों की याद दिलाई जो उन्होंने आम जनता से किए थे।
नरेंद्र मोदी जी कोई ना कोई झूठा वायदा कर जाते हैं। 2014 से कह रहे हैं हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को सही दाम देंगे, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को उन्होंने वायदा किया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर्नाटक के मैंगलोर में चुनावी रैली की। इस रैली में मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा।
कांग्रेस, जेडीएस और उस जैसे अनेक दलों की प्रेरणा परिवारवाद है और हमारी प्रेरणा राष्ट्रवाद है।
चुनावी हलचलों का जायजा ले रहे थे नवीन नेगी। चुनावी खबरों के बीच ही रुख करते हैं बिहार की एक चुनावी खबर का, जहां राजनीतिक पारा खासा बढ़ता दिख रहा है। राज्य में जेडीयू और आरजेडी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सत्तारूढ़ जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर सौदेबाजी करने का आरोप लगाया, तो प्रशांत किशोर ने भी इस पर खुली बहस की चुनौती को लेकर ट्वीट किया। इस तनातनी पर सुनिए पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
आमतौर पर चुनावी मौसम के दौरान यह परिपाटी रही है कि कुछ पुराने प्रसंगों को उठाया जाता है और गुप्त राजनीतिक बातों को सार्वजनिक कर खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा साबित करने की कोशिश की जाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। राज्य के 2 प्रमुख दल इसी लड़ाई में उलझ से गए हैं। दरअसल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शुक्रवार को दावा किया था कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उनके पति लालू प्रसाद से मिलकर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के विलय की बात की थी। उनके अनुसार
सच्चाई है कि 5 बार आए मिले, क्या रहते हैं कि आने वाला चुनाव में हम लोग एक हो जाए, पार्टी को मर्जर कर दे, तब चुनाव लड़े, तब प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार के घोषणा कर दीजिए प्रधानमंत्री 2019।
इसके बाद जदयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने ट्वीट के माध्यम से लालू परिवार को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लालू प्रसाद जी जब चाहें मेरे साथ मीडिया के सामने बैठ जाएं, सबको पता चल जाएगा कि मेरे और उनके बीच क्या बात हुई थी और किसने किसको क्या ऑफर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के बीच की तनातनी ने राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के अनुसार,
किससे ओपन डिबेट करेंगे? ओपन डिबेट करें ना तो लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी यादव जी से, राबड़ी देवी जी से तो नहीं करेंगे, स्टेशन नहीं है, तैयार है, ओपन डिबेट करेंगे।
वहीं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण में महागठबंधन के खराब प्रदर्शन से उपजी बौखलाहट को इसका नतीजा मान रहे हैं। हालांकि जानकार बताते हैं कि दोनों दलों के बीच मची तनातनी की पृष्ठभूमि वर्ष 2017 में महागठबंधन में टूट और जदयू के एनडीए में शामिल होने के 6 माह के बाद पड़ी थी। वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
अभी किताब आई है गोपालगंज टू रायसीना, जिसमें उन्होंने खुद ही खुलासा किया है। देखिए बिटवीन टू की बात ना, वो कह रहे हैं कि जो मैंने बातें की थी उसमें यदि मैं खुलासा करूंगा तो लालू जी बेनकाब हो जाएंगे। इसका मतलब है कुछ कहीं ना कहीं दोनों की अंतरंग बातें हुई होंगी और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बात हुई होगी, तभी तो इस तरह की बातें हो रही हैं।
जबकि वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा का मानना है कि लालू और नीतीश दोनों ही एक कद्दावर नेता हैं, दोनों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। उनके अनुसार,
किताब में कोई बात आ जाने से मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद जी का जो व्यापक जनाधार है इसमें बहुत बड़ा बढ़ोतरी हो जाएगा, या नीतीश कुमार जी का जो जनाधार है जो उसमें कोई बहुत बड़ा क्षरण हो जाएगा, ऐसी बात हमको लगती नहीं। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोपों का, तो ये तो चुनाव में जब मौके मिलते हैं, किताब आई है और किताब में तो आ गई है कि भाई मिलने गए थे, लेकिन आप न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते हैं तो आप देखे हुए कि इस तरह के खबर भी छपते रहे थे पहले।
जाहिर है अब यह चुनाव परिणाम ही बताएगा कि लालू प्रसाद और प्रशांत किशोर के मिलन से जो विवाद खड़ा हुआ है उससे नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को कितना धब्बा लगेगा और महागठबंधन को कितना फायदा होगा। नीरज सहाय, BBC, पटना।
अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भूमिका राय। जी भूमिका, बताएं।
जी शाहिद, सबसे बड़ी खबर चुनाव से ही जुड़ी है कि वाराणसी में प्रियंका गांधी दे सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती।
यानी एक बार फिर आकलन किया जा रहा, अनुमान लगाया जा रहा है।
हाँ, मतलब कयास है। ये नवभारत टाइम्स की खबर है और ये खबर इस तरीके से आई कि एक मीडिया कर्मी ने प्रियंका गांधी से पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ रही हैं, जिसके जवाब में उन्होंने सवाल दागा और कहा कि मैं क्या वाराणसी से चुनाव लड़ लूं। तो ये खबर इस तरीके से आई है कि संभवतः प्रियंका गांधी वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे सकती हैं। और दैनिक हिंदुस्तान अखबार की बात करूं तो ये पड़ोसी मुल्क से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में जो दूध की कीमत है वो 120 रुपए से लेकर 180 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मतलब वहाँ पे महंगाई तो बहुत वक्त से थी, रोज़ाना रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर के पेट्रोल, डीजल, सब्जियों के दाम वैसे ही बहुत ऊंचे हो रखे थे, लेकिन अब दूध की कीमत जो है वो 120 से 180 रुपए लीटर हो गई। मतलब वाकई परेशानी की बात है। और इसी अखबार ने छापा है कि घाटी से जैश का नेतृत्व जो है वो साफ हो गया। ये अखबार ने सेना के हवाले से इस खबर को लिखा है। अखबार लिखता है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि कश्मीर घाटी से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सफाया कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फौज किश्तवाड़ समेत जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को दोबारा सिर नहीं उठाने देगी।
वहीं एक खबर का और मैं जिक्र कर दूं, जैसे जनसत्ता पे है, अभी बात चरमपंथ की हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक चुनावी रैली में कहा कि आतंकवाद के आगे असहाय बनी रही कांग्रेस। तो उनका कहना है कि कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं किया। वहीं एक नीचे हेडलाइन है उसी खबर के बिल्कुल नीचे, जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं सेना के, रिटायर्ड हो चुके हैं जनरल DS हुड्डा, जो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई उसके वो नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जवाबी कार्रवाई के लिए सेना के हाथ हमेशा खुले थे, यानी ये कहना नहीं है जो मोदी सरकार कहती है कि हमारी सरकार आने के बाद ही सेना को छूट मिलती रही है। उनका कहना है पूर्व सैन्य अधिकारी का कि हमेशा से सेना के लिए खुली छूट थी।
जी शायद आपने हमले का जिक्र किया, तो हमले सिर्फ सीमा पे नहीं हो रहे हैं, देश के भीतर भी बवाल की स्थिति कुछ जगहों पे बनी हुई है। तो ये दिल्ली के मायापुरी इलाके का मामला है जहाँ पे सीलिंग के दौरान पुलिसकर्मियों और कारोबारियों के बीच में जमकर बवाल हुआ, कई लोग इसमें घायल हुए, ईंट पत्थर बरसाए गए। और ये जो सीलिंग का मामला है ये भी अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया होता या मिल जाए भविष्य में, तो संभावनाओं के तहत भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, इन चीज़ों को रोका जा सकता था। दिल्ली की बात करूंगी, दिल्ली विश्वविद्यालय, क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं हो चुकी हैं, अब परिणाम आने वाले होंगे 12वीं के, तो बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, तो DU जो होता है वो पहली पसंद कई बार होती है, तो DU में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो मई महीने से शुरू होगी। पहले ये प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब 15 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है और सारी जो चयन होंगे वो क्या कहते हैं ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा एक खबर और बता दूं, राजनाथ सिंह ने राजद्रोह और राजद्रोह का जो कानून है उसके और सख्त होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो इस कानून को हम और सख्त करेंगे।
बहुत बहुत अखबारों की समीक्षा के लिए धन्यवाद भूमिका।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड, यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बाद अब जानते हैं बीते हफ्ते पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में क्या कुछ छपता रहा। इन उर्दू अखबारों की समीक्षा को तैयार किया है BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने और इसे अपनी आवाज दी है कीर्ति दुबे ने।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते पाकिस्तान पर भारतीय हमले की संभावना, बालाकोट में पत्रकारों का दौरा और भारत में होने वाले आम चुनाव से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले बात संभावित पाकिस्तान हमले की। अखबार एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर सुर्खी लगाई है कि 16 से 20 अप्रैल तक भारतीय हमले की सूचना। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार के पास ऐसी सूचनाएं हैं कि भारत 16 से 20 अप्रैल के बीच पाकिस्तान के खिलाफ एक और सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। अखबार के अनुसार शाह कुरैशी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग के बादल अभी छटे नहीं हैं। कुरैशी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी देशों को इसकी आशंका की सूचना दे दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सियासी उद्देश्य से चुनाव में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पूरे क्षेत्र में शांति को दांव पर लगा रही है। भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव का जिक्र भी सभी अखबारों में रहा। 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ जिसमें लोकसभा की 91 सीटों के लिए वोट डाले गए। जंग अखबार में अफजाल रेहान ने एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है भारतीय चुनाव में विजेता कौन। अफजाल लिखते हैं कि अपने सियासी फायदे के लिए मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी की है और जिस तरह झूठ पर झूठ बोले, उसकी बुनियाद पर अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो भी ऐतिहासिक तौर पर वो बड़े लीडर कहलाने के हकदार कभी नहीं बन पाएंगे। इमरान खान का वो बयान पाकिस्तानी मीडिया में छाया रहा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मोदी दोबारा PM बनते हैं तो कश्मीर मसले का हल ढूंढने में ज्यादा आसानी होगी, लेकिन खुद इमरान के विदेश मंत्री इस बारे में कुछ और ही कहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान के बयान को बिना किसी संदर्भ के पेश किया जा रहा है। अखबार दुनिया के अनुसार शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ना हम किसी के यार हैं न मददगार, भारत में जो जीतेगा उसी से बात होगी। पाकिस्तान ने इस हफ्ते कई विदेशी पत्रकारों और राजनयिकों को बालाकोट स्थित उस मदरसे का दौरा करवाया जिस पर कथित तौर पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उस समय किसी भी पत्रकार या किसी भी निष्पक्ष गुट को वहां जाने की अनुमति नहीं दी थी। करीब 1.5 महीने बाद पाकिस्तानी सेना ने खुद विदेशी पत्रकारों को मदरसे ले जाने का इंतजाम किया। अखबार दुनिया ने इस पर सुर्खी लगाई, विदेशी पत्रकारों का बालाकोट दौरा, भारत के झूठे दावे की सच्चाई दुनिया ने देख ली। अखबार के अनुसार भारत में रहने वाले विदेशी पत्रकार समेत कई विदेशी पत्रकारों और कई राजनयिकों को बालाकोट स्थित चरमपंथी शिविर को हवाई हमले में तबाह करने और 300 से अधिक चरमपंथियों को मार गिराने के भारतीय दावे की हकीकत खुद लोगों ने अपनी आंखों से देख ली। अखबार के अनुसार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मदरसे के छात्रों और शिक्षकों से खुलकर बातचीत की और अपनी आंखों से देखा कि मदरसे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की समीक्षा को तैयार किया था इकबाल अहमद ने, जिसे अपनी आवाज़ दी कीर्ति दुबे ने। बढ़ते हैं आगे। श्रोताओं, जलियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं बरसी के मौके पर कल अमृतसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृतसर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो सरहद है जिसकी दूसरी ओर पाकिस्तान है। 100 साल पहले जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थीं, तब वहां कोई सरहद नहीं थी और ना ही कोई दूसरा मुल्क था। लेकिन 1947 में दो अलग देश बनने के बाद क्या मौजूदा पाकिस्तान में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहीं कोई चर्चा होती है? यही जानने के लिए इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता शुमायला जाफरी ने उर्दू कवि और इतिहास के जानकार अहमद सलीम से बात की।
जलियांवाला बाग के हादसे को 100 साल गुजर गए हैं, बरसी या सालगिरह कह लें, जो भी कह लें। पाकिस्तान में उसकी मुझे न कोई तैयारियाँ नज़र आती हैं, न कोई उसका जिक्र मिलता है। पाकिस्तान में जो दरसी किताबें हैं उनमें सिर्फ मुसलमानों का जिक्र है, या अगर हिंदू का जिक्र है तो नेगेटिव टर्म में, नेगेटिव यूँ कि जी अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी हिंदू मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे। क्यों साजिश कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने 1000 साल तक हिंदुओं पर हुकूमत की थी। तो अब ये हमारा बयानिया है, कौमी बयानिया हमारा, और इस कौमी बयानिए में सियासत हो, तारीख हो, तहजीब हो, अदब हो, फ़लसफ़ा हो, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो दरसी किताबों में कहाँ से आएगा?
फिल्म या लिटरेचर या थिएटर, उसमें जलियांवाला बाग को कैसे डिपिक्ट किया गया इस वाक़े को?
फिल्म और उसका थिएटर का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मे बी के टेलीविज़न और फिल्म में कोई एपिसोड्स इसके चले हों, लेकिन लिटरेचर का मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि लिटरेचर में जो मेरे 3 पसंदीदा फिक्शन राइटर हैं उन तीनों ने इसको बयान किया है। सबसे पहले तो मंटो की एक कहानी है, 1919 की एक शाम। मंटो के बाद कुरतुलैन हैदर हमारी बहुत बड़ी राइटर हैं उर्दू ज़ुबान की, उनका नावल है आग का दरिया, जो बहुत लीजेंडरी नावल है और यादगार नावल है। उसमें भी इसका जिक्र है, क्योंकि वो पूरा हिस्ट्री उन्होंने बयान की है। अब्दुल्ला हुसैन हमारे बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी जो है उदास नस्लें नावल, जो 50s में या अर्ली 60s में छपा था।
जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है उससे इस सब कॉन्टिनेंट की तारीख में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट समझा जाता है। इस वाक़े के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की, टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी थी। तो क्या इस तरफ जो पाकिस्तान की साइड का पंजाब है, क्या यहाँ पर भी लोगों ने इस पर एहतजाज किया था?
अगर आप मुझे इजाज़त दें खुल के बोलने की, तो मैं अर्ज़ करूँ कि उधर टैगोर साहब ने ये कह कर के मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ सर का ख़िताब वापस कर दिया। यहाँ हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल को सर का ख़िताब मिला, क्योंकि उन्होंने मलका की शान में पहली जंग अजीम जीतने की खुशी में जो जश्न मनाया जा रहा था उसका मलका का कसीदा लिखा है, जो बदकिस्मती से अब अवेलेबल है उनकी कुलियात में। तो हमारा तो जो भी तारीख़ है वो कोई बहुत ज़्यादा प्राइड की तारीख़ नहीं है अगर मुकाबलतन देखा जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी बहुत सारे मुसलमान बाज़मीर मुसलमान होंगे जिन्होंने इसका बुरा माना होगा।
पाकिस्तान में जलियांवाला बाग नरसंहार को कैसे याद किया जाता है, बता रहे थे इतिहासकार अहमद सलीम। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल आईपीएल में 2 मुकाबले खेले गए, जहां पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के सामने जीत के लिए 188 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज जोस बटलर के 43 गेंदों पर बनाए गए 89 रन की मदद से 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ये राजस्थान की 7 मैचों में दूसरी जीत थी, जबकि मुंबई इंडियंस की 7 मैचों में ये तीसरी हार रही। उधर आईपीएल में ही कल खेले गए दूसरे मुकाबले में आखिरकार विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इस सीजन की पहली जीत लगातार 6 मैच हारने के बाद नसीब हो ही गई। बेंगलोर ने जीत के लिए 174 रनों का लक्ष्य है। खुद कप्तान विराट कोहली के 67 और एबी डिविलियर्स के नाबाद 59 रनों की मदद से 2 विकेट खोकर हासिल करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब को 8 विकेट से हराया। वहीं सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती कल तब पूरी तरह समाप्त हो गई जब चौथी वरीयता हासिल पीवी सिंधु महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा से 21-7, 21-11 से हार गई।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टो ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लीबिया में विदेशी सैन्य हस्तक्षेप भूमध्य सागर में शरणार्थियों के पलायन को और बढ़ा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े विमान ने कल कैलिफोर्निया में अपनी पहली उड़ान भरी। 6 इंजनों वाले इस विमान के पंखों की लंबाई एक फुटबॉल मैदान से भी अधिक है। वेतन की मांग को लेकर भारतीय एयरलाइन जेट एयरवेज के सैकड़ों कर्मचारियों ने दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सदफ खामेद ईरान की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो आधिकारिक तौर पर किसी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।